आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ये क्लास 10th के साइंस का 6th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले लाइफ के बारे में बात करते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि कोई लिविंग बीइंग लिविंग है या नहीं, वो जीवित है या नहीं, ये आप लोग कैसे बताते हैं? सपोज मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति जिंदा है या नहीं, कोई ह्यूमन बीइंग जिंदा है या नहीं, आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि वो व्यक्ति चल फिर रहा है या फिर बात कर रहा है, ही कैन हियर यू, वो आपकी बात समझ पा रहा है, तो आप कहेंगे कि वो जिंदा है, तभी तो वो बात समझ पा रहा है। अब सपोज करो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोया हुआ है, ना वो उस वक्त आपकी बात सुन रहा है ना आपकी बात का जवाब दे रहा है, वो सोया हुआ है कम्प्लीटली, वो बिल्कुल नींद में है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? क्या वो जिंदा है या वो मर चुका है? आप तब ये कहेंगे कि वो भले ही हमसे बात ना कर रहा हो, मूवमेंट ना दिखा रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ प्रोसेसेस उसमें चल रही हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, उसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि इसकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स ये जिंदा है। नाउ वॉट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स जो होते हैं ना तो वो मूवमेंट दिखाएंगे ना ब्रीदिंग उनमें होती है, तो आप उनमें कैसे कहेंगे कि प्लांट्स जिंदा है या नहीं? तो आप कहेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन हैं, हरे भरे हैं, तो इसका मतलब है वो जिंदा है, क्योंकि सूखे हुए बिल्कुल ऐसे पेड़ हो जिनमें कोई पत्तियां नहीं हैं तो हम कहते हैं कि वो पेड़ मर चुका है। तो अगर ऐसा कोई पौधा है या पेड़ है जिसमें पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, तो हम कहेंगे कि वो पेड़ जिंदा है। अब मान लो कि ऐसा कोई पेड़ है जिसके ऊपर ग्रीन पत्तियां नहीं हैं, हरी भरी पत्तियां नहीं हैं, पीले रंग की हैं, लाल रंग की हैं, किसी और कलर की हैं, तब आप क्या कहेंगे? तब आप ये कहेंगे कि क्योंकि ये पेड़ या फिर पौधा ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है कि ये पेड़ या पौधा जिंदा है। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम एक तरीके से मूवमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट हो या फिर किसी और तरीके की मूवमेंट हो, तो हम बेसिकली लिविंग बींग्स में मूवमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और मूवमेंट देख करके हम पक्का कह सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति जिंदा है या फिर वो प्लांट जिंदा है या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ बंद हो चुकी है, उनकी मैक्सिमम ग्रोथ ऑलरेडी वो अटेन कर चुके हैं, तो ऐसे प्लांट्स लिविंग नहीं है। वो प्लांट्स भी लिविंग है जिनकी ग्रोथ अब रुक चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली है। अब उनमें जो आप लोगों को दिखता होगा पीरियोडिक ग्रोथ, वो यही होता होगा कि कभी कभी पत्तियां सारी झड़ जाती होंगी, फिर आ जाती होंगी, फिर छोटी पत्तियां आती होंगी, फ्लावर्स आते होंगे, इस तरीके से आपको दिखेगा। हो सकता है आपको उसकी हाइट इंक्रीज होते हुए ना दिखे। तो ऐसे पौधे भी जिनकी हाइट अब फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी हम उनमें कुछ ऐसा देख पाते हैं जिससे हम कहते हैं कि वो जिंदा है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा जानवर है जो रेस्पिरेशन होने का मूवमेंट आप लोगों को नहीं दिखाता, सांस लेते वक्त उसमें कोई भी हरकत नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरकत नहीं दिख रही है, मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो मर चुका है। ऐसा नहीं है। कुछ एनिमल्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस की जो मूवमेंट होती है, जैसे आप जब सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े फूल जाते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो पिचक जाते हैं, तो इस तरीके की मूवमेंट मान लो किसी एनिमल में नहीं दिख रही है, तो दिस डजंट मीन कि वो एनिमल जिंदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होती हैं जो हम लोगों को अपनी आंखों से नहीं दिखती हैं। आप लोगों को कुछ मूवमेंट्स तो अपनी आंखों से दिख गई, अगर आपको वो दिख गए तो आप बिल्कुल कंफर्म है कि वो लिविंग बीइंग जो है वो जिंदा है। अब कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट्स होती है, और वो मूवमेंट हमें दिखती नहीं है अपनी आंखों से, लेकिन वो हो रही है कॉन्स्टेंटली इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये मूवमेंट किसकी है? ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त मूवमेंट करते रहते हैं, और अगर किसी लिविंग बीइंग के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल श्योर होके कह सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। यही वजह है कि वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। तो इनमें होता क्या है कि वायरसेस जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, तब तक इनमें कोई मूवमेंट नहीं दिखती, इनमें मॉलिक्यूल्स की कोई मूवमेंट नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को अटैक करते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म को इन्होंने अटैक किया है, उसकी सेल की मशीनरी को हथिया लेते हैं, उन जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रवेश कर चुके हैं उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उस वायरस के अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं और वायरस मल्टीप्लाई कर जाता है। लेकिन खास बात यह है कि वायरस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अभी प्रवेश नहीं किया है, बाहर है, तो उस वक्त उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं दिखती। इसीलिए काफी साइंटिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि वायरसेस जो है ना तो वो कम्प्लीटली अलाइव कहे जा सकते हैं ना ही वो कम्प्लीटली डेड कहे जा सकते हैं। अब हम लोगों ने कहा कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो वो डेफिनेटली जिंदा है। तो ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इतना जरूरी क्यों है लाइफ के लिए? तो देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका मतलब है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में देखते हैं कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, वो ईंटें होती हैं। ईंटों में सीमेंट लगा करके, ईंट से ईंट को जोड़ करके दीवार बनाई जाती है, दीवार को दीवार से जोड़ करके कमरे बनाए जाते हैं, बहुत सारे कमरों को जोड़ करके एक घर बनाया जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो भी एक बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल। सेल से मिलकर के हम बने हैं, सेल से सेल जुड़ते हैं बहुत सारे, तो टिश्यूज बनते हैं, बहुत से टिश्यूज इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, बहुत से ऑर्गन्स इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे किसी बॉडी के अंदर हो तो एक लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की, ये भी एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स है। और इन वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स में, यानी कि लिविंग बॉडी में, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वो कौन होता है, वो सेल होता है। सेल के अंदर भी सेल से छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे सेल मिलकर के बना हुआ है। तो होता क्या है कि विथ टाइम जब एनवायरनमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को सपोर्ट नहीं करती है, तो उससे क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इतनी अच्छी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को दिखती है कि सेल्स हैं, सेल से मिलकर के टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से बने हैं ऑर्गन्स, तो इस तरीके की ये जो स्ट्रक्चर है इसका ब्रेकडाउन होने लग जाता है बिकॉज ऑफ सम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट हो जो उस लिविंग बॉडी को फेवर नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी को अच्छे से मदद नहीं कर रहा है ग्रोथ करने के लिए, तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रेकडाउन करने लग जाती है। और अगर मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन ही ब्रेकडाउन कर जाएगी तो ऑब्वियसली वो बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। एग्जाम्पल से ही समझ लो, मान लो अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की अगर मैं ईंटें तोड़ना शुरू कर दूं तो जाहिर सी बात है दीवार अपने आप ही ढह जाएगी, दीवार ढह जाएगी तो रूम ढह जाएगा और घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एनवायरनमेंट में बदलाव आने की वजह से, एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से जब बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, और बॉडी का ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये ब्रेकडाउन करने लगता है, तो बॉडी की भी डेथ हो सकती है। और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि ये ब्रेकडाउन ना हो, उनकी लिविंग बॉडी जो है वो अच्छे से लिविंग रहे, कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो बेसिकली कोई ब्रेकडाउन अगर हो गया है तो उसको रिपेयर करते हैं और मेंटेनेंस करने में हेल्प करते हैं। सो वी कैन से दैट लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। अब एक लिविंग बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उस बॉडी का, वो क्या है, वो सेल है। और सेल का भी छोटा कंपोनेंट्स जिनसे सेल मिलकर के बना है वो मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो अगर हम मेंटेनेंस बनाए रखना चाहते हैं, बॉडी की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखना चाहते हैं, तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बॉडी के अंदर करवाना जरूरी होता है। और ये मूवमेंट होना क्यों जरूरी है, दिस मूवमेंट इज नेसेसरी सो दैट द लिविंग क्रीचर कैन कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग इट्स स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि मेंटेनेंस करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो हम देखेंगे। बॉडी की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए जो मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है वो हर वक्त होता रहता है। भले ही आपकी बॉडी उस वक्त कोई काम ना कर रही हो, उसके बावजूद भी उसके अंदर वो मेंटेनेंस के प्रोसेसेस चलते रहते हैं। सो इवन इफ आप खाली बैठे हुए हैं, आप खाली सो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके बॉडी के अंदर ये मेंटेनेंस की जो प्रोसेसेस है होती रहती है। अब आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने प्रोसेसेस कहा, प्रोसेस नहीं कहा, यानी कि बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं। तो बॉडी के अंदर जो बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं टू कीप द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बॉडी आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। जो एक लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं बॉडी की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब क्योंकि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है इसको करने के लिए जरूरत क्या है, ये मेंटेनेंस प्रोसेस बेसिकली डैमेज और ब्रेकडाउन जो बॉडी में हुआ उसको रिपेयर करने के लिए की जा रही है। तो अगर कोई काम आप कर रहे हैं, सपोज आप लोगों के घर में थोड़ी टूट फूट हो गई है, आपको चूना पेंट करवाना है या फिर आपको प्लास्टर करवाना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ से मेहनत करेंगे, आप एनर्जी खर्च करेंगे, आप मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, अगर बॉडी की ब्रेकडाउन की रिपेयरिंग करनी है, डैमेज की रिपेयरिंग करनी है, तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी खर्च होगी। और वो एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर खुद से नहीं बनती, वो बॉडी को बाहर से लेनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो आप लोग खाना खाते हैं उसी से बॉडी को एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी बॉडी इस्तेमाल करती है ब्रेकडाउन या फिर डैमेज की रिपेयरिंग करने के लिए। एंड देयर इज अ प्रोसेस बाय विच द सोर्स ऑफ फूड इज टेकन इन साइड अ बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड इंजेशन। आप कोई चीज को खा रहे हैं तो उसे इंजेशन कहते हैं, और वो जो फूड आपने खाया है, जो फूड आपने इंजेस्ट किया है, उससे एनर्जी को प्राप्त करना न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहलाता है। सो यू कैन से द प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम बाहर से एनर्जी को बॉडी के अंदर लाते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके पेज नंबर 94 पर स्टार्टिंग से जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप लोगों को दिया गया है थर्ड लाइन, जो सेकंड पैराग्राफ का थर्ड लाइन है वहां से शुरू होता है और न्यूट्रिशन तक आप लोगों को, आप न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस का भी डेफिनेशन दिया हुआ है सेम पेज पे, पेज नंबर 94 पर ही, और उसमें वो जो डेफिनेशन है वो पहले की दो लाइन्स जो है इस पेज की वो आप लोग देख सकते हैं। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस का भी आप डेफिनेशन लिख लेंगे और न्यूट्रिशन का भी लिख लेंगे, आपको अगर एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अब ये एनर्जी जो हमने ली है न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस के द्वारा, वो बेसिकली क्या है, न्यूट्रिशन के प्रोसेस का इस्तेमाल करके हमने जो बाहर से एनर्जी बॉडी में लाई है वो हम डैमेज रिपेयर या फिर ब्रेकडाउन को रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर बॉडी ऐसी है जो ग्रो कर रही है, ग्रोइंग बॉडी है, ग्रोथ हो रही है उसमें, तो वहां पर उसे एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो आप खाने के रूप में ले सकते हैं। अब धरती के ऊपर क्या होता है, धरती के ऊपर जो लाइफ है, तो ये जो लाइफ धरती के ऊपर है ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, और इसी वजह से जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड्स होते हैं उनमें से ज्यादातर जो सोर्स हैं फूड के वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, सच एज ग्लूकोज जो है ये भी कार्बन का कंपाउंड है, लैक्टोज नाम का एक शुगर है जो कि आपके दूध में मिल्क में मौजूद होता है, तो लैक्टोज भी एक कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज बेसिकली कहाँ होता है, फ्रूट्स में मिल सकता है आप लोगों को, तो फ्रूट्स में आप लोगों को ग्लूकोज मिलता है, ग्रेप्स के अंदर आप लोगों को फ्रक्टोज नाम का एक शुगर मिलता है, और गन्ना जो होता है, केन जो होता है, उसके अंदर आप लोगों को केन शुगर मिलता है जिसको आप सुक्रोज भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के कार्बन के सोर्सेज हैं जिनको हम फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कार्बन के सोर्स हैं, अल्टीमेटली क्या करना होता है, इस कार्बन के सोर्स का ब्रेकडाउन करना होता है और न्यूट्रिशन के प्रोसेस के द्वारा करना होता है। तो हमने जो फूड लिया है वो तो किसी कार्बन के सोर्स के रूप में है, लेकिन उससे हमें एनर्जी बनानी है, तो एनर्जी बनाने के लिए जो फूड है उसका ब्रेकडाउन करते हैं, उसको तोड़ते जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसमें रिएक्शन होती है और उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसमें से एनर्जी ले ली जाती है और बॉडी को वो एनर्जी मिल जाती है जिससे वो अपनी फंक्शनिंग्स जो है वो कर पाती है। अब ये जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, जो आपने फूड लिया है, कार्बन का कोई सोर्स आपने लिया है, उससे जो ब्रेकडाउन करवा के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कन्वर्ट करने के बाद उससे एनर्जी लेने का जो प्रोसेस है उसमें ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस यूज होती हैं। तो होता क्या है कि जो कार्बन का सोर्स है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, या फिर जो कार्बन का सोर्स आपने लिया है उसका भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवा के, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बेसिकली होता है एडिशन करवाना ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन करवाने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, जो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, हवा को अपने भीतर लाते हैं, तो उसी दौरान हम लोग ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम फूड का ऑक्सीडेशन कराने के लिए करते हैं, और फूड का ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द कार्बन सोर्स जो हमने फूड के रूप में लिया हुआ है। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को बाहर से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। एक बार और ध्यान से सुन लो, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम बाहर से आउटसाइड एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं और उस ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन की एंट्री बॉडी में करा रहे हैं और फिर फूड का ब्रेकडाउन करवा रहे हैं यूजिंग ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को रेस्पिरेशन का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है, पेज नंबर 94 पर ही है ये डेफिनेशन। पेज नंबर 94 का जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी लास्ट की 3 लाइंस, वो आप लोगों को नोट करनी है, रेस्पिरेशन का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। तो ये तो हम बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग जैसे ह्यूमंस होते हैं या प्लांट्स होते हैं या दूसरे एनिमल्स होते हैं जो बहुत सारे सेल्स से मिल करके बने, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स से मिल करके बने, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर हम सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरीके की कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती कि सेल्स हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, फिर टिश्यूज बन रहे हैं, क्योंकि ये तो यूनिसेलुलर है, ये बना ही एक सिंगल सेल से है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, खाना अपने भीतर लाने के लिए उनके अंदर कोई स्पेसिफिक एक अलग प्रकार का ऑर्गन नहीं होता, कोई अलग प्रकार का अंग नहीं होता। गैसेस का आदान प्रदान कराना यानी कि ऑक्सीजन को लेना बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना या फिर जो भी उनमें वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव करने के लिए भी उनके पास कोई अलग से अलग प्रकार का अंग नहीं है। जैसे हम लोगों में अंग है रेस्पिरेशन के लिए, हमारे अंदर सबसे पहले तो नोज है, उसके बाद हमारे अंदर लंग्स हैं, तो अलग जो ऑर्गन है वो रेस्पिरेशन के अलग हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग हैं, डाइजेशन के लिए अलग हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग प्रोसेसेस के लिए नहीं होते। और इनमें अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी ही इनकी सिंगल सेल से बनी है, तो इनकी सारी की सारी बॉडी ही एनवायरनमेंट के कंप्लीट कॉन्टैक्ट में होती है, जिसकी वजह से अगर इन्हें रेस्पिरेशन करना है, अगर इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है अपनी बॉडी के अंदर फूड का ब्रेकडाउन करवाने के लिए, तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी ही एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है, तो बहुत ईजीली ये ऑक्सीजन को अपने बॉडी के सर्फेस से एंटर करा लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं ऑफ द ऑक्सीजन गैस इनटू देयर बॉडी। और ये इन्होंने कैसे कराई है, इन्होंने सिंपली अपने अंदर गैस की एंट्री करा दी है अपनी बॉडी के सरफेस के थ्रू। सिमिलरली अगर इनके अंदर कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका रिमूवल भी ये सिंपल डिफ्यूजन से ही करा देते हैं अपनी बॉडी के सरफेस से, उस चीज को जो इसे बाहर निकालनी है उसका एक्सक्रीशन करा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी जो शरीर है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनमें अलग ऑर्गन्स होते हैं हर एक प्रोसेस को करवाने के लिए। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक सेल, ऐसा नहीं है कि वो बाहर की जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ वो कॉन्टैक्ट में हो। हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, वो बाहर के सरफेस के साथ, बाहर की इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। सिर्फ हमारी जो बाहर की कवरिंग है यानी कि स्किन जो होती है, केवल वो ही आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट में होती है। लेकिन बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं, जो हमारे बोन्स हैं या फिर ब्लड है, ब्लड इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, जैसे सिंगल सेल्स का होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का होता है, उनकी पूरी की पूरी एंटायर बॉडी ही आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, आउटसाइड एनवायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होती है, इसलिए उन्हें ना तो वेस्ट का रिमूवल करने के लिए, ना ही रेस्पिरेशन करने के लिए किसी अलग ऑर्गन की जरूरत होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं, सारे के सारे सेल्स एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, इसलिए हम लोगों को अलग अलग ऑर्गन्स की जरूरत होती है। अभी देखो क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हम लोग हैं, तो हमारे में क्या होता है कि हर एक फंक्शन को करने के लिए, हर एक प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन को प्रोसेस करने के लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीशन का प्रोसेस करने के लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो फूड का अपटेक होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का यूज होता है फॉर दी ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो इसके पीछे, ये प्रोसेसेस करवाने के पीछे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स, पर्टिकुलर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इससे एक दिक्कत हो जाती है कि सपोज मान लो आपने खाना जो खाया, आपने मुंह से खाया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, वो पेट में हुआ, डाइजेशन होने के बाद उसमें से जो चीज़ें बॉडी को ज़रूरत थी उसको अब्जॉर्ब कर लिया गया, जो चीज़ें बॉडी को ज़रूरत नहीं थी उसका एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा बॉडी से। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जगह पर, एक अलग ऑर्गन में तो आपने फूड को लिया, उसके बाद उससे जो चीज़ें बॉडी को चाहिए उसको अब्जॉर्ब किया, तो ये तो अलग ऑर्गन ने अब्जॉर्प्शन किया, अब उसकी ज़रूरत तो बॉडी के हर एक पार्ट को है, हर एक बॉडी के पार्ट में डैमेजेस होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, जिसकी रिपेयरिंग करनी होती है, तो एनर्जी जो चाहिए वो तो बॉडी के हर एक पार्ट को चाहिए, लेकिन फूड इनटेक तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन ने किया है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि सपोज आपके माउथ इन्वॉल्व है फॉर द इनटेक ऑफ फूड, उसके बाद आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, ये इन्वॉल्व है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए, उसके बाद क्या होता है, उसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है, अब्जॉर्प्शन भी न्यूट्रिएंट्स का होता है, जो चीज़ें फूड में से हमें ज़रूरत है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी इंटेस्टाइन्स के थ्रू, तो अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन्स ने किया, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन करेंगे लंग्स के अंदर और उसमें से एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो एनर्जी प्रोड्यूस किसी और ऑर्गन में हुई, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट तो बॉडी के हर एक पार्ट को है, पैरों को भी है, उंगलियों को भी है, जो हमारे पैर की उंगलियां हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनको भी डैमेजेस को रिपेयर करना है, तो यहाँ पर एनर्जी कहीं और बन रही है, हमें उस एनर्जी को दूसरी जगह भी पहुँचाना है, तो इसीलिए बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, और वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बॉडी के अंदर बेसिकली ब्लड का इस्तेमाल करके होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, वो लंग्स तक पहुँचे, तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी जहाँ जहाँ पर भी बॉडी में डिमांड होगी वहाँ वहाँ पर इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। अब देखो, हम लोग जो कार्बन के सोर्स इस्तेमाल करते हैं उसका ब्रेकडाउन करवाते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, उससे एनर्जी पैदा करवाते हैं, उस एनर्जी का बॉडी इस्तेमाल करती है। ये प्रोसेस होने के वक्त वहाँ पर कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बॉडी के अंदर उसे नहीं रखा जा सकता, और ये एक वेस्ट है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी को, और इसे रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स भी हैं टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूविंग दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का भी डेफिनेशन आप लोगों को दिया गया है पेज नंबर 94 पर ही, जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं लास्ट के 3 lines। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside with the body by a process called excretion. ये आप लोग ये entire paragraph ही लिख सकते हैं। When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for generation of energy, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. यहाँ से लेकर के excretion तक पूरा आप लोग लिखेंगे, ये excretion का definition होगा। और एक्सक्रीशन का प्रोसेस करवाने के लिए बॉडी के अंदर स्पेशल डिजाइन्स होते हैं, स्पेशल टिश्यूज इन्वॉल्व होती हैं, और क्योंकि हर एक पार्ट को एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी उसने कार्बन के सोर्स से प्राप्त की है ऑक्सीडेशन करवा के उसका, तो बॉडी के हर एक पार्ट में जब एनर्जी बनती है तो वेस्ट भी बॉडी के हर एक पार्ट में बन सकता है, तो वो वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करवा के उस स्पेशल ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है ताकि वो ऑर्गन उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल सके, एक्सक्रीशन कर सके उसका। और यहाँ पर भी जो ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है वो ब्लड का इस्तेमाल करके करवाया जाता है। अब ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 95 पर, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनएफिशिएंट और इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। इसका मतलब है कि ह्यूमंस के जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाना इनसफिशिएंट क्यों होता है, अपर्याप्त क्यों होता है, पूरा क्यों नहीं पर पाता ये। अगर मान लो सिर्फ बॉडी के सरफेस से डिफ्यूजन करवा के ही हम ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर एंट्री करवाएंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कत ये आएगी कि बॉडी जो है हमारी, हम इंसानों की या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसकी सारी की सारी बॉडी के सेल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं आउटसाइड एनवायरमेंट के, जिसकी वजह से हर एक सेल की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन के लिए पूरी नहीं पड़ पाती। कुछ सेल्स जो हैं वो बॉडी के इनसाइड हैं जो बिल्कुल भी एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होते, जैसे कि लंग्स के जो सेल्स हैं या फिर हार्ट के सेल्स जो हैं ये बिल्कुल भी आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है। केवल हम इंसानों की स्किन जो है, आउटर कवरिंग जो है, ये आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड है, उसके साथ संपर्क में है, तो इनकी रिक्वायरमेंट तो हो सकता है कि पूरी हो जाए सिंपल डिफ्यूजन से। और सिंपल डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन यानी कि देखो डिफ्यूजन होता है किसी गैस का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बेस्ड ऑन इट्स कंसंट्रेशन। जिस जगह पर ज्यादा गैस थी वहां से वो ऐसी जगह जाएगी जहां पर कम गैस है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बाहर की सरफेस है और उसके अंदर डिफ्यूजन कराना है किसी गैस का, तो सिंपली वो सरफेस के अंदर से होता हुआ उस बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब उस सेल की पूर्ति हो गई, जो सेल कॉन्टैक्ट में है बाहर की वर्ल्ड से, उसको जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसने डिफ्यूजन करा के अपने अंदर एंट्री करवा ली गैस की और उसको मिल गया ऑक्सीजन। लेकिन वो सेल्स जो बॉडी के बिल्कुल अंदर है, इंटीरियर में है, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता, तो इसीलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो पर्याप्त नहीं है, दूसरे प्रोसेस की हमें जरूरत पड़ती है जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके जरिए बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचता है ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन, यानी कि सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन करवा के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम क्या कारण रखते हैं, हम क्या कारक रखते हैं ये समझने के लिए, ये कहने के लिए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है, जिंदा है या नहीं है। तो जो हमने पढ़ा है उससे हमने ये सीखा है कि बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट ढूंढते हैं, और हो सकता है कि वो मूवमेंट हमें एक्सटर्नली ना दिखे लेकिन उनके बॉडी के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा होगा तो डेफिनेटली वो अलाइव होंगे। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई बॉडी, लिविंग बॉडी जिंदा है या नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है या नहीं। और ये हम कैसे देखेंगे, उनके अंदर जो प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस जो है वो तभी हो पाएंगी अगर बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो हो पाएगा। तो आप लोग कैसे देखेंगे, आप पहले तो ये कहेंगे कि मूवमेंट हो रहा है या नहीं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये हम चेक करते हैं। उसमें से भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट चेक करते हैं, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लाइफ प्रोसेसेस को देखते हैं कि बॉडी में हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो वो लिविंग बॉडी अलाइव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स, सोर्स ऑफ फूड हम यूज करते हैं, उनको हम यूज क्यों करते हैं, इंसान को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली एनवायरमेंट के गलत इम्पैक्ट पड़ने की वजह से, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ने की वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ डैमेजेस होते रहते हैं, कुछ ब्रेकडाउन होते रहता है सेल्स का, जिसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी जो है बॉडी फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड एक्सट्रैक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस एसेंशियल हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरी होते हैं करवाने के लिए टू कीप देम अलाइव, और उनमें से कौन कौन से है, न्यूट्रिशन है, उसके बाद रेस्पिरेशन है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये एक लिविंग बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर करवाने होते हैं ताकि वो अलाइव रह सके। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो प्रोसेसेस हैं इनको एक एक करके बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपने जो आज पढ़ा है उसमें से कोई आपको डाउट हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछ लेना, रिवाइज जरूर कर लेना जो आज हमने पढ़ा है उसको, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।